नारायणं नमस्कृत्य नारम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः तदीयन्तस्तहि अभद्राणि विद्नोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानाञ्जनशीलकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं चैतन्यरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहैकं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणम हरि प्रिय वांछा कल्पतरु कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुवादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणी। श्री गुरुपाल लीलामृत अमेरिका में प्रचार भाग दो प्रकरण 47। श्री गुरुपाल का उत्तरी अमेरिका का भ्रमण सहसा ठप हो गया। नई दिल्ली से तेजास का तार आया कि प्रभुपाद ही प्रभुपाद श्रीमती इंदिरा गांधी से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत आना होगा। तार में कोई विवरण नहीं था और उनका सचिव दिल्ली मंदिर से फोन द्वारा संपर्क नहीं कर पा रहा था, किंतु प्रभुपाद को और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा जब शुभ अवसर आए तो भक्त को तुरंत काम करना चाहिए। हरि कृष्ण यात्रा की योजना ऐसी बनाई जिससे वे रात में मॉन्ट्रियल में रुक सकें। मॉन्ट्रियल से उन्हें हवाई जहाज द्वारा पेरिस पहुंचना था, वहां से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले प्रभुपाद कुछ आराम कर सके। श्री प्रभुपाद के आसन प्रस्थान का समाचार फैलते ही टोरंटो के अनेक भक्त अपनी परियोजनाओं के संबंध में उनके अंतिम आदेश प्राप्त करने के लिए श्री प्रभुपाद से मिलने का प्रयत्न करने लगे। रामेश्वर ने भी लॉस एंजलिस से फोन किया और हरि कृष्ण पर दबाव डाला कि वह श्री प्रभुपाद से श्रीमद भागवत के पांचवें स्कंद के संपादकीय के संबंध में कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर ले, किंतु भागवत की ब्रह्मांड संरचना विषय व्याख्या पर पूछे गए प्रश्नों को प्रभुपाद ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि अबोधगम्य है। उन्होंने बीबीटी को आदेश दिया कि पुस्तकें यथारूप में छापी जाएं। इसमें जो लास्ट लाइन आ रही है किंतु भागवत की ब्रह्मांड संरचना विषय व्याख्या पर पूछे गए प्रश्नों को प्रभुपाद ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे अबोधगम्य है, इसका क्या मतलब हो? जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रभुपाद उस क्वेश्चन को टाल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन? बोध होना उसका कठिन है, तो प्रभुपाद यहां पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए आगे की लाइन समझिएगा, इसका आंसर जो है नेक्स्ट बची हुई लाइन के अंदर है। उन्होंने बीबीटी को आदेश दिया कि पुस्तकें यथा रूप में छापी जाए, मतलब जो एज इट इज उसका जो ट्रांसलेशन है, जो उसका पर्पट मैंने दिया है, उसी के अनुरूप छापा जाए, उसमें क्वेश्चन करके कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया जाए, सो दैट उसका जो मर्म है, उसका जो 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 उसका निचोड़ है, जो उसका सारांश है, वही ना बदल जाए, आपके कंफ्यूजन से, आपके क्वेश्चन से कंफ्यूजन नहीं हो जाए, पब्लिक को जो पढ़ेगा, जो इसको व्याख्या जानने की कोशिश करेगा, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जानने योग्य नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना उसके लिए उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद, उसका पर्पट उसके लिए एनफ है, उससे ज्यादा अगर करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो डाइवर्ट हो जाएगा, परवर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये एक प्रभुपाद की क्वालिटी थी, इसीलिए भगवद्गीता का नाम क्या रखा गया? भगवद्गीता यथारूप, एज इट इज, जैसा भगवान ने संदेश दिया है, जैसा अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, जैसा संजय ने डिफाइन किया है, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं करी। श्री प्रभुपाद न केवल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने की आशा से उत्साहित होकर भारत लौट रहे थे, वरना उनके सामने उनकी अधूरी परियोजनाएं भी थी, विशेषकर मुंबई में हरे कृष्ण लैंड की परियोजना। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि उनके विचार से प्रभुपाद को ऐसे अवसर की प्रतीक्षा थी कि अपना पाश्चात्य भ्रमण समाप्त करके भारत की परियोजनाओं का प्रबंध स्वयं देखने के लिए यहां वापस आ सके। प्रभुपाद ने अभी अभी वृंदावन में सुरभि को एक पत्र लिखवाया था जिसमें निराशा व्यक्त की थी कि उनके बिना काम पूरा नहीं हो सकता। तुम सब मुझे केवल पत्र लिखते रहे हो, वहां बिना मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति में के तुम कुछ नहीं कर पाते, केवल पत्राचार, सतर्क रहो, जमीन खरीदने के इस सौदे में कोई काम चोरी छिपे ना होने पाए, ये अत्यंत जोखिम भरा है, इसलिए सावधान रहो, मुझे बंबई के निर्माण कार्य की नियमित रिपोर्ट भेजते रहो, मैं बहुत चिंतित रहता हूं, इसलिए तुम्हारी नियमित रिपोर्ट पाकर मुझे प्रसन्नता होगी। ये जो चर्चा आ रही है, श्री प्रभुपाद ने अभी अभी वृंदावन में सुरभि को एक पत्र लिखाया था, तो सुरभि कौन है, कोई जानता है इनके बारे में? आर्किटेक्ट सुरभि स्वामी, सुरभि दास। कहां थे? वृंदावन हो, और कहां थे पंजाबी भाग? कितने लोगों ने दर्शन किए? कितने लोग मिले? कब मिले? अभी रिसेंटली, जब जब पंजाबी बाग में कब थे? पंजाबी बाग का जो 14/63 पुराना टेंपल हुआ करता था, उसमें एक ड्राइंग रूम था जिसको कि बाद में लेक्चर हॉल और प्रसादम हॉल में कन्वर्ट किया गया। ड्राइंग रूम के अंदर जो है बड़े बड़े लकड़ी के स्टैंड हुआ करते थे, कोई वहां पे लेक्चर नहीं होता था। आई रिमेम्बर वेरी वेल, जब मैंने ज्वाइन किया था इस काम को 85 में, तो उन दिनों वहां पे मायापुर के नक्शे बना करते थे, मायापुर का काम सुरभि स्वामी वहां किया करते थे, और उसपे मैप्स, बड़े बड़े ऐसे ऐसे स्टैंड, जैसे ये स्टैंड है, ऐसे बहुत बड़ा बड़ा स्टैंड, इतना बड़ा स्टैंड, उस पर फुल साइज के मैप्स प्रिंट करके उनके ऊपर डिजाइनिंग, पूरी प्लानिंग, पूरा सारा सिस्टम जो है उसमें अप्लाई किया जाता था। ये जो है 84, 85, 83 की बातें हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं। तो उन्होंने जो है वो आर्किटेक्चर बॉम्बे का मायापुर का, वृंदावन का, सब उन्होंने तैयार किए। ही वाज ए मेजर प्लेयर इन दैट, मुख्य काम करते थे वो। बॉस्टन, न्यू वृंदावन, न्यूयॉर्क के भक्तों को प्रभुपाद के अचानक प्रस्थान के समाचार से गहरा आघात पहुंचा। अब वे उनके मंदिरों को नहीं देख सकेंगे और उन्होंने इस कठोर सत्यानुभूति का संघात अनुभव किया कि प्रभुपाद उन्हें किसी भी क्षण छोड़ सकते हैं। शिष्यों के साथ हमेशा रहने के लिए वे बाध्य नहीं थे। शिष्यों को भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि वे हमेशा उनके साथ उपस्थित रहेंगे। शिष्यों के साथ उनके आदेश से यही पर्याप्त था। निसंदेह कई महत्वपूर्ण निर्णय अब भी लिए जाने थे। बॉस्टन में भक्तों ने आशा की थी कि वे उनके साथ कोई नई इमारत खोजेंगे, लेकिन उनके आदेशों का पालन करते हुए वे स्वावलंबी हो सकते थे, उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते थे। इस पैराग्राफ में एक बात निकल के आ रही है, दैट इज एसोसिएशन विद गुरु। गुरु के साथ आपका संग, तो क्या बात समझ में आई, क्या दर्शा रहा है, क्या हाईलाइट कर रहा है? नहीं, बात इसमें ही निकल के आ रही है कि गुरु के साथ फिजिकल एसोसिएशन होना हर समय नोट करने वाला है, मिलना है, जुलना है, आना है, जाना है, अलग बात है, हर समय आप चाहें कि गुरु मेरे साथ उपस्थित रहे, तो वो कठिन कार्य है, क्योंकि गुरु के पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहां उनको जाना। तो हमारा संग कैसा होना चाहिए, हमारा संग किससे होना चाहिए? यस माता जी, गुरु की आज्ञा से संग होना चाहिए। जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, दे शुड बी रिजाइडिंग इन द कोर ऑफ आवर हार्ट। हमारे हृदय के अंदर जो है वो प्रस्थापित हो जानी चाहिए, ये गुरु की इंस्ट्रक्शन है, मुझे इनसे डेविएट हुए बगैर, बदलाव लिए बगैर इनका पालन करना, मुझे कोई चेंज नहीं लाना है, मुझे कोई बदलाव नहीं करना है। आई हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एज इट इज। जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें बिना अपनी मर्जी से कोई बदलाव लाए हुए मुझे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, तो गुरु विल बी प्लीज्ड, ही विल बी हैप्पी। ये शिष्य जो है मेरे आदेश का यथारूप पालन करता है, उसमें कोई अपनी मर्जी से डेविएशन नहीं करता। तीन वैरायटी के शिष्य बताए गए, तीन क्वालिटी के शिष्य बताए गए। यस, फर्क क्या है? हम उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ की बात नहीं करते, हम एक, दो, तीन की बात करते हैं। लेट अस मेक इट वेरी सिंपल। कि गुरु के पास गए, गुरु ने आदेश दिया, सुना, इस कान से उस कान से निकाल दिया और अपनी मर्जी से काम करते रहे, बस अपने दर्शन देने गए गुरु को। कहने को गुरु के दर्शन करने गए, कहने को गुरु को प्रणाम करने गए, प्रणाम जरूर किया, पर दर्शन अपने दिए, गुरु जी मैं आया हूं, मैं आया हूं, मुझे देख लीजिए। कि कल आप ये ना कहें कि मेरे से मिलता नहीं, मेरे पास आता नहीं, मैं आ गया हूं। दूसरी क्वालिटी किसकी है? जो गुरु से आदेश लेता है और फिर आदेश का पालन करता है। आदेश लिया, दर्शन करने गए, प्रणाम किया, संग किया, आदेश लिया, आदेश का पालन किया। तीसरी क्वालिटी किसकी है? जो उनके भाव को समझता है, जो उनके मूड को समझता है, जो उनकी विचारधारा को समझता है, उनके थॉट्स को समझता है कि इनका मूड क्या है, और उस मूड के अनुसार कार्य करता है। गुरु ऑटोमेटिकली पसंद, देखो मेरे पास नहीं आया कोई बात नहीं, मेरे भाव को समझ रहा है और उस भाव के अनुसार चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम, आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड विद हिम। सो कौन सा श्रेष्ठ है, पहला, दूसरा कि तीसरा? तीसरे भाव में। इसके पास तीसरा मूड है गुरु के आदेश का, बिना आदेश लिए पालन करना, ही इज द बेस्ट डिसाइपल। तो यहां पर चर्चा आ रही है कि लेकिन उनके आदेशों का पालन करते हुए, लाइन एक एक लाइन जो है प्रभुपाद लीलामृत की समझने वाली है, उनकी अनुपस्थिति में भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है आपके साथ, प्रेजेंट क्या है उनके आदेश, उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते थे। जिन भक्तों ने हाल ही में अपने मंदिरों में प्रभुपाद का स्वागत किया था, वे अनुभव कर रहे थे कि उनके साथ बिताए गए क्षण कितने महत्वपूर्ण थे। उनके साथ भक्तों को व्यक्तिगत संसर्ग का जो अवसर मिला था उसका आनंद लेना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। पुस्तक वितरकों को पहले से ही ज्ञात था कि उनका कार्य प्रभुपाद के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और यही पर्याप्त था। लॉस एंजलिस में प्रेस कर्मचारी प्रभुपाद के अमेरिका के अधिवास पर निर्भर नहीं थे, उनका मिशन उनके सामने था। 2 महीने में 17 पुस्तकें और उनके लिए भी वे दिन रात कार्य कर रहे थे। यहां पर 2 बातें निकल के आ रही हैं। एक बात यह है कि इंस्ट्रक्शन दी थी पर ध्यान नहीं रहा क्या दिया था, इतने सारे काम है मेरे पास, इतने सारे फुर्सत नहीं मेरे पास, मैं उसको याद बताना क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, एक भाव यह है। और दूसरा यह है कि उनके साथ भक्तों को जो व्यक्तिगत संसर्ग का अवसर मिला था उसका आनंद लेना चाहिए और उसे स्मरण रखना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। मतलब आपकी मेमोरी में, आपके स्मरण में हर क्षण हर पल जो है वो बातें आ रही हैं कि हमारा प्रभुपाद से या अपने गुरु से कैसे मिलना हुआ, क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई, क्या हम उन इंस्ट्रक्शंस पे पूरा उतर रहे हैं या पूरा नहीं उतर रहे हैं, क्या हम में तो कमी आ रही है कि नहीं आ रही है, कमी आ रही है तो एनालाइज किया जाए, उसको पूरा किया जाए और उस मार्ग पे आगे बढ़ा जाए। और दूसरी बात यहां निकल के आ रही है कि पुस्तक वितरकों को पहले से ज्ञात था कि उनका कार्य प्रभुपाद के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अभी तो आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन मंथ गया है, कितनी हुई लोचन लोग, कोई आइडिया नहीं, मेरा कल 2.25 लाख तो हुई होंगे, यस देते दाम 2.25, ताली बजाइए सब, 2.25 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूशन पिछली बार से तो ज्यादा है केशव मुरारी जी, पिछली बार से ज्यादा है कि नहीं, थोड़ा बढ़ाया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज नहीं, पहले दिन से प्रभुपाद का जो मुख्य लक्ष्य था वो था बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे गुरु महाराज जो हैं उनका भी मुख्य लक्ष्य जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बहुत जोर देते हैं, बहुत ही जोर देते हैं। यही वजह है कि मध्यम मंदिरों में पंजाबी बाग नंबर एक है और बड़े मंदिरों में ईस्टर कैलाश का मंदिर नंबर एक है। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है, मतलब प्रभुपाद के सपने को अगर कोई साकार कर रहे हैं तो उसमें पूरी मेहनत से, पूरी हिम्मत से, पूरे जोश से पंजाबी बाग के भक्त भी और ईस्टर कैलाश के भक्त भी, रोहिणी के भक्त भी, द्वारका के भक्त भी और एनसीआर के भक्त खूब जोर लगा के लगे हुए हैं, कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती। मैंने देखा है, मैं कई बार जो है जब लेक्चर देने जाता हूं, गुड़गांव के अंदर मैं लेक्चर देने गया, रात में 8 बजे हुए हैं, मैं सड़क पर ड्राइव कर रहा हूं, लाल बत्ती पे खड़ा हूं, तो पता लगा कि भक्ति मेरे पास आ गया, शीशा खुलवा के प्रभु जी किताब लीजिए कहां ईस्टर कैलाश, कहां गुड़गांव, और उसमें भी एक वो दूर सुदूर की लाल बत्ती जिसपे एक अच्छा ट्रैफिक होता है, उसमें भक्तों की पूरी टोली विराजमान है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ठंड के अंदर व्यक्ति सोचता है मैं घर में रजाई में दुबका रहूं तो इससे बढ़िया क्या काम हो सकता, रजाई से बढ़िया काम है क्या। अभी 14 तारीख को रोहिणी की रथ यात्रा है, अंदर कई बार हम लोग थोड़ा लेट आते हैं, कहीं लेक्चर देकर लेक्चर देने गए थे, वहां से अच्छा सीधा रथ यात्रा में आएंगे, या कहीं भी रथ यात्रा में जाते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल समय से रथ यात्रा के पहले नहीं पहुंच पाते तो हम लोग लेट पहुंचते हैं। तो रास्ता ढूंढना है, वो किताब बांट रहा है ना उसी रास्ते पे होगा। वो 2 किलोमीटर पहले से किताबें बन रही है, ये नहीं कि रथ के आसपास, सब लोग रथ के आसपास रहना चाहते हैं, सब लोग रक्षा होती है रस्सा खींचे रथ के पास रहें, रथ के आगे रहें, नृत्य करें। पर जब बुक डिस्ट्रीब्यूटर है वो 2 किलोमीटर पहले से, लुधियाना में मैंने देखा 2 किलोमीटर पहले से हमारी जो टीमें हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगी हुई हैं, पता लग जाता है कि इस रूट से यात्रा जाएगी, इस रूट पर यात्रा चलेगी, और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले से किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो प्रभुपाद का जो स्वप्न है, जो स्वप्न था कि बुक पुस्तक वितरण का कार्य जो है नंबर एक होना चाहिए, और हम उसको आज महसूस करते हैं कि पुस्तक वितरण कार्य वाकई नंबर एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं। श्री प्रभुपाद का संयुक्त राज्य और कनाडा में भ्रमण ठीक एक विचारशील सन्यासी के मनोभाव से युक्त था, और वे अपनी जीबीसी के लोगों को दिखा रहे थे कि उन्हें केवल अपने डेस्क के पीछे बैठकर व्यवस्था नहीं चलानी है, वरना भ्रमण करना और प्रचार करना है। प्रभुपाद ने बल देकर कहा कि भ्रमण का तात्पर्य निरुद्देश्य भटकना या अमृत प्रमोद की खोज करना नहीं है, भ्रमण करते हुए प्रचारक को कृष्ण भावनामृत समाज के लिए कुछ ठोस कार्य करना होता है। श्री प्रभुपाद दलास गुरुकुल मिसिसिपी फार रथ यात्रा में दिखा चुके थे। डेट्रॉयट में उन्होंने एक आलिशान इमारत प्राप्त कर ली थी, टोरंटो में विस्मयकारी चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिसे भारतीयों की वित्तीय सहायता से खरीदा जाना था। शिकागो में वो दिखा चुके थे कि अपराध तथा स्त्री स्वतंत्र जैसे आधुनिक प्रकरणों पर बिना किसी से कोई समझौता किए उपदेश कैसे दिया जाता है, और शिष्य उनकी समानता एवं अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण की ओर से निस्वार्थ कार्य का उनका दृष्टांत उनके शिष्यों के लिए आदर्श बन सकता था। उन्हें केवल अपने डेस्क के पीछे बैठकर व्यवस्था नहीं चलानी, अफसरी नहीं करनी, ऑफिस में बैठ गए, डेस्क में बैठ गए, कुर्सी मेज पे बैठ गए, यहीं से ऑर्डर पास हो रहे हैं, यहीं से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, ऐसा प्रभुपाद ने कभी टीच नहीं किया। टीच क्या किया कि भ्रमण करना है, प्रचार करना है, और फिर जोर देके कहा कि अगर भ्रमण कर रहे हो तो उसका जो अर्थ है, उसका जो तात्पर्य है, उसका जो पर्पज है, वो बिना किसी मतलब के, बिना किसी एम के, बिना किसी गोल के भटकना नहीं है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। मैंने साउथ में देखा, और इसमें भी हम पीछे पड़ चुके हैं कि क्रिसमस वाले दिन जो है प्रभुपाद के भक्त जो हैं वो मॉल में गए हुए, मॉल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यहां भी मॉल्स में जाते हैं। एक आम व्यक्ति सोच सकता है देखो भक्त है मॉल में घूमने जा रहा है, देखा इनका भी मन घूमने को करता है, परंतु जब वो देखते हैं कि वहां पे टेबल लगा, जो कि टेबल उठा के लाए, फोल्डिंग बुक्स की पेटियां रखी और बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। मॉल के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परमिशन लेना और फिर वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना वो आसान काम नहीं है, इट्स नॉट इजी। मॉल वाले मना कर सकते हैं, देखिए धार्मिक पुस्तक है हम नहीं बांटने देंगे आपको, यहां जो है हम तो क्या है धर्म निरपेक्ष है, हम जो है ये हिंदुओं की गीता कैसे बांटने दे सकते हैं, हम हमारे सब तरह के लोग आते हैं, परंतु उनको कन्विंस करना, उनको मनाना, उनको समझाना ये धर्म निरपेक्ष ही है, ये समस्त संसार के लिए है, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये बात सारी बतानी। पहले मॉल के आयोजकों को प्रीच कर, उनको प्रीच करके परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना। कहने वाले कह सकते हैं अरे हम गए थे ना मंदिर में, आपके भक्त भी मॉल में घूमने आए हुए थे, लोग कह सकते हैं, कहते भी हैं, परंतु भक्त जो है उसको अपना एम पता, वो लक्ष्य मालूम है, उसका लक्ष्य मॉल में घूमना नहीं है, उसका लक्ष्य है कि प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना, भगवान का संदेश घर घर पहुंचाना, और जो मॉल में लोग आ रहे हैं उनका भी तो घर है, वहां भी तो संदेश पहुंचना चाहिए, उस संदेश को पहुंचाने के लिए जाते हैं। तो यहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि भ्रमण का तात्पर्य निरुद्देश्य भटकना नहीं है, अमोर प्रबोध एंजॉयमेंट की खोज करना नहीं है, वरना प्रचारक को कृष्ण भावना अमृत समाज के लिए ठोस कार्य करना, तो ठोस कार्य होगा। मैं परसों पढ़ रहा था, मैंने इंटरनेट पर भी मैसेज दिया था, एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा लगेगा। कोल्हापुर एक जगह है महाराष्ट्र में, कर्नाटक के बॉर्डर के पास है, पुणे से कुछ 200 किलोमीटर सवा 200 किलोमीटर साउथ। एक हैंडीकैप लड़का अपने नौकरी पे जाता है रोज एक बस में बैठ के, तो सरकार ने उसको थोड़ा सा बेनिफिट दिया कि हैंडीकैप होने के नाते उसका बस टिकट जो है उसमें कंसेशन मिला, उसको कंसेशन मिला। तो उसके मन में बात आई, इस्कॉन टेंपल से कोल्हापुर में जुड़ा हुआ था, थोड़ा इस्कॉन टेंपल जाता था, तो मन में उसके बात आई कि मेरे को जो है कृष्ण की कृपा से गुरु की कृपा से ये सुविधा मिल रही है, मेरे पैसे की बचत हो रही है, तो क्यों ना मैं इस पैसे को कृष्ण भावनामृत में खर्च करूं, विचार आ गया। तो उसने बैक टू गॉडहेड की मराठी भाषा में कुछ प्रतियां खरीदी और 20 प्रतियां लेके उसने जो है अगले दिन बस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एरिया ऐसा है वहां मोहम्मदस भी बहुत है, हिंदू भी है, मोहम्मदस भी है, दो चार क्रिश्चियन भी मिल जाते हैं। कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी, कुछ ने ली नहीं, कुछ ने ली, एनीवे कुछ लोगों ने पढ़ी। तो उसने जब बस के गेट पे अपना बैठ गया पास की सीट पे, और जब वो लोग उतरे तो उनसे प्रतियां वापस ले ली। नेक्स्ट डे फिर उसने भी बांटी, कोई ट्रेवलिंग में किसी ने एक आर्टिकल पढ़ा था, किसी ने आधा पढ़ा था, किसी ने पौना पढ़ा था, किसी ने डेढ़ पढ़ा था, किसी ने दो पढ़े थे, इस तरह गाड़ी चल रही थी। उसको लगा कि हौले 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 एक महीने के अंदर थोड़ा प्रयास सफल हुआ है, लोगों ने उसको लेने का प्रयास किया है और पढ़ने का प्रयास किया। अगले महीने की बचत से उसने 20 प्रतियां और खरीद ली, तो हर महीने वो 20 प्रतियां खरीदता, प्रतियां ज्यादा हो गई तो उसने उनको देने के बाद लेना छोड़ दिया, ले जाओ आप कोई बात नहीं पढ़िए। पहले महीने 5 लोग ले गए, अगले महीने 8-9 ने ले लिया, फिर 12-14 ने ले लिया, फिर आपकी नया इशू कब आ रहा है, नेक्स्ट इशू कब आ रहा है बताइए। तो चर्चा फैलती गई। अब उसने क्या किया कि एक वो प्रभुपाद का चैंटिंग बॉक्स जिसमें कि हरे कृष्ण महामंत्र है वो ले गए, गाड़ी में उसने हल्का सा चलाना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया। तो उसकी हम ज्यादा तेज आवाज नहीं थी, इतनी मध्यम आवाज थी, किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं थी, और जो सुनना चाहता था उसको सुनाई दे रहा था। उसने खुद भी जो है साथ में हल्की हल्की आवाज में कीर्तन करना शुरू कर दिया, हल्की आवाज में, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो। अब तक जो है जो मुस्लिम लोग थे ना उनके मन में भाव बन चुका था कि हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये किताब देता है, किताब भी पढ़ने में अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, पढ़ने में क्या नुकसान जाता, पढ़ते थे लोग। इस तरह एक साल बीत गया, एक साल के अंदर जो है उस बस का नाम पड़ गया हरे कृष्णा बस। अब वो हरे कृष्णा बस हो गई, और फिर उसने उस बस के अंदर किसी अपने जो उन लोग पढ़ते थे किताबें ले जाते थे उनके साथ उसने जो किसी को जिम्मेदारी दे दी, एक दूसरी दूसरे मंदिर जो 10 मिनट बाद बस चल उसमें आना शुरू कर दिया। सो 3 साल के अंदर जो है वहां पर 10 हरे कृष्णा बस हो गई, 10 बसों में हरे कृष्णा कीर्तन चलता है और बीटीजी डिस्ट्रीब्यूट होती है, बीटीजी पढ़ी जाती है। तो वो लिखता है, कहता है एक दिन मैं जो है बस से बाहर निकला तो मेरे मन में विचार आया कि इनको जो है बीटीजी घर में क्यों ना पहुंचाई जाए, तो मेंबर बनाया जाए। उसने बैक टू गॉडहेड के लिए मेंबरशिप स्टार्ट कर दी, मेंबर्स बनाने शुरू कर दिए। कॉस्ट टू कॉस्ट जितने में आती थी उतने में उसने उनको देनी शुरू कर दी। जो लोग बस में ले जाते थे बस में लेके, जो नहीं ले जाते थे उनको घर में उसने कहा आपके घर में पहुंच जाएगी। तो लोकल जो उनका सेंटर था उसको एड्रेस दे दिया, वहां से पोस्ट होकर घर चले जाते थे। वो लिखता है कि मुझे हैरानगी तब हुई कि जब मैं एक दिन नीचे उतरा तो दो फैमिलीज मेरे को मिली, कहने लगी कि हमको मेंबर बना लीजिएगा। दोनों फैमिली मुस्लिम थी, दोनों फैमिली मुस्लिम थी, और उन्होंने जो है उस बीटी जी को अपने घर में लेना शुरू किया। तो प्रभुपाद का जो पुस्तक वितरण है, इट इज गॉट ए ट्रेमेंडस इफेक्ट, ट्रेमेंडस। मतलब हम सोच नहीं सकते कि हमने किताब बांट के क्या किया है, उसका रिप्रकशन क्या है, कहां कौन किसके घर में बम फटा है, हमें नहीं पता। आई स्टिल रिमेंबर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की हजारों स्टोरीज हैं, कुछ भक्त जो है किताबें बांटते हुए कीर्तन करते हुए ब्राजील में पहुंचे, गांव में, एक गांव में ब्राजील किताब बांट रहे हैं, तो एक घर का दरवाजा खटखटाया तो उसमें एक बूढ़ी माता बाहर निकली, देखा तिलक लगाए हुए है, अरे भाई ये कहां से आ गई। मैं तो कहा हम भक्त लोग शहर से आए हैं, कहां है ब्राजील में छोटा सा गांव है उसके अंदर एक माता बाहर निकल रही है और बकायदा तिलक लगाए हुए है, चैंटिंग कर रही है, कमाल की बात है। तो इन्होंने, उसने देखा, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑब्लिगेशंस करके जो भी हुआ अंदर ले गए। तो देखा कि अंदर जो है भगवद गीता के पेटियां पड़ी हुई हैं, वो माता गांव में डिस्ट्रीब्यूशन करती है, आसपास के गांव में डिस्ट्रीब्यूशन करती है, किसी समय शहर में रहती थी, अब वो शहर से अपने घर वापस गांव में आ गई है और गांव में एक अलमारी के अंदर छोटा सा एक पूजा घर बना के गौर नेताई विराजमान, गौर नेताई की सेवा हो रही है। तो प्रभुपाद की जो बुक्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, कई बार हम जब स्टोरीज पढ़ते हैं, जब कथाएं पढ़ते हैं कि कैसे कैसे लोगों ने किया, तो हमारा मन जो है उद्वेलित हो जाता है कि क्या क्या बात हो रही है। जर्मनी के स्टेशन के ऊपर जो है एक लड़की किताबें बांट रही, 13 साल की आयु में, भगवद गीता दी, एक फिल्म स्टार टाइप आदमी था, उसको उसने किताब फेंक दी, सॉरी नॉनसेंस, क्या स्टेशन पे फेंक दी, फिर उठाई, फिर दी, सुनाई नहीं देता, मुझे नहीं चाहिए, फिर पकड़ा दिया, यू वॉन्ट सम मनी, नो इट्स फ्री फॉर यू, फिर भी उसने उसको 10 मार्क दे दिए, जाओ किताब ले आकर घर रख दी। 7 साल बीत गए, 7 ईयर्स बाद को घर में परेशानी हुई, दिक्कत हुई, फैमिली में दिक्कतें आई, तो उसे याद आया छोटी सी लड़की ने यह कहा था कि दिस विल रिलीव ऑल योर टेंशन, सारी आपकी दिक्कतें दूर करेगी किताब, और पढ़ना शुरू किया। 3 डेज एंड 3 नाइट्स में उसने भगवद गीता समाप्त कर दी। ढूंढा लोकल टेंपल, गया लोकल टेंपल में, देखा कि वही लड़की जो है फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, 20 साल की हो चुकी है, सामने मिली, उसके चरणों में गिर गया, यू आर द गर्ल हु हैज चेंज्ड माय लाइफ, मेरा जीवन तुमने बदल दिया है, मुझे किताब देके, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये जो फिल्म स्टार था ये फुल टाइम डिवोटी बना इस्कॉन जर्मनी के अंदर। ये फुल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रभाव, यू कांट इमेजिन। तो हमारे भक्त लोग जो हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, शायद उनको कभी नहीं विचार आएगा कि हमने इसमें किसके घर बम फोड़ा, किसके यहां बम फोड़ा है, वो कृष्णा जानते हैं, पर उनका एफर्ट जो है, जो उनका मेहनत है, जो उनका कार्य है, वो उनके खाते में बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो यहां जो है श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रभुपाद के बहुत से नगरों में भ्रमण करने के बाद जो संयुक्त राज्य में अधिकांश लोग उनके पद को स्वीकार नहीं करते थे, संवाददाता उनसे भेंट वार्ता करते थे किंतु उसकी तरह सभी कहानियों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था, प्रेस के लिए जो नए नए व्यक्तियों और घटनाओं का नित्य तांता बंधा रहता था, श्री प्रभुपाद उनमें से एक प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे। जैसा गीता ने कृष्ण में भविष्यवाणी की थी कि सहस्त्रों लोगों में से कोई एक सिद्धि की खोज करता है, हजारों में से एक व्यक्ति उस अथक खोज में जो भी उनसे मिलने आया उनसे वार्तालाप करने का उत्साह और स्वीकृति प्रभुपाद सदैव प्रदर्शित करते रहते थे। रथ यात्राओं और अन्य सार्वजनिक उत्सवों के माध्यम से वे लाखों लोगों को संभावनापूर्ण आध्यात्मिक जीवन का प्रथम स्वाद दे रहे थे। एक शुद्ध भक्त के साथ एक पल का भी संसर्ग लोगों को अगले जन्म के लिए अत्यंत अशुभ परिणाम से बचा सकता था। लव मात्र साधु संग। तो एक क्षण के लिए भी अगर शुद्ध भक्त का संसर्ग आपको मिल जाता है तो आपका जीवन में बदलाव आ जाता है। संयोग से लाभान्वित होने वाले लाखों लोगों के अतिरिक्त प्रत्येक नगर में कुछ ऐसे सौभाग्यशाली थे जिन्होंने यह अनुभव किया कि जीवन पर श्री प्रभुपाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। फिलाडेल्फिया में प्रोफेसर थॉमस हॉपकिंस, शिकागो में पादरी जॉन पोर्टर, सैन फ्रांसिस्को की हवाई यात्रा में एक फ्लाइट सुपरवाइजर, फिलाडेल्फिया में प्रशंसा से भरी एक मां और कई अन्य सब समझते थे श्री प्रभुपाद से उनकी भेंट उनके लिए विशेष महत्व रखती थी। श्री प्रभुपाद अपने भ्रमण की एक खास वजह बताया करते थे। बातों में उन्होंने कहा था, मेरा धर्म यह देखना है कि मेरे शिष्य जिन्होंने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया है वे पतित ना हो, यही मेरी चिंता है। और जैसा कि उन्होंने प्यार भरे शब्दों में डायलस में कहा, मेरे इतने पुत्र पुत्रियां हैं, पौत्र पौत्रियां हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं। वे अपने शिष्यों के आध्यात्मिक पिता थे और इस कान का प्रत्येक केंद्र उनका घर था। पाश्चात्य देशों का भ्रमण करते हुए श्री प्रभुपाद को इस बात का संतोष था कि उनका आंदोलन शक्तिशाली होता जा रहा था, विरोध भी बढ़ रहा था, किंतु उसे उन्होंने इस कान की प्रामाणिकता के एक और लक्षण के रूप में लिया। उनकी मूल योजना अब भी अपनी जगह स्थिर थी और इस भ्रमण में वे उसी को आगे बढ़ा रहे थे। अमेरिका के कृष्ण चेतनामय बन जाने की संभावना थी, कम से कम उन्हें और उनके शिष्यों को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि उन्हें सफलता होती है तो उसके दिव्य प्रभाव से संपूर्ण संसार का उत्थान किया जा सकता। यहां विरोध की बात आई, आज भी है, व्हाट्सएप पे SMS पे बहुत सारे मैसेज आते हैं जो कि एंटी स्कान होते हैं। उसका अर्थ क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, उसका अर्थ क्या है? स्कान का विरोध, इससे क्या निष्कर्ष निकलता
है?
वैभव नहीं है, नहीं समझिए, यहां वैभव की चर्चा नहीं हो रही है। वैभव भक्तों के पास है। अगर आप देखेंगे तो वृंदावन में जो प्रेम मंदिर बना है वैभव में कम है क्या? ये जो स्वामी नारायण के मंदिर है वैभव में कम है क्या? है, वो नहीं कहते। एक उनको लगता है कि इस्कॉन इज ए रिकग्नाइज्ड फोर्स, आज एक प्रमाणिक शक्ति बन गई है। मतलब ठीक है, इन्होंने बना दिया, उसने बना दिया, उसने बना दिया, चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं, आज की स्थिति क्या है कि आज की स्थिति के अंदर विश्व भर के अंदर चाइना ने भगवत गीता पब्लिश कर दी, गवर्नमेंट ने, सोचो, यहां प्रचार नहीं हो सकता? हमारे महाराज लोगों ने किया ना, वैष्णव आचार्यों ने प्रचार किया ना, अंडरग्राउंड रह के किया। मुझे याद है एक रशिया से टूटी हुई कंट्री है, शायद आर्मेनिया है, आई एम नॉट रिमेंबर एग्जैक्ट नेम। तो वहां हमारे गुरु महाराज जब जाते हैं तो पेंट कोट पहन के जाते हैं, सर में टोपी लगा के जाते हैं ताकि उनका जो सिर है दिखाई ना दे, क्योंकि वहां पे आप धोती कुर्ता पहन नहीं सकते, इट्स नॉट अलाउड। वीजा मिल जाता है, बहुत बड़ी बात है, उसके बाद वहां पे जो प्रचार हो रहा है कैसे हो रहा है? दुबई, अबू धाबी, कतर, दोहा, जितनी भी आपकी जॉर्डन, जितनी भी आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, इसमें रथ यात्रा निकलती है, पर ड्राइंग रूम में निकलती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सड़क पे नहीं निकलती, ड्राइंग रूम में निकलती है। पर एक रिकग्नाइज्ड फोर्स है, मतलब विश्व भर को समझ में आ गया है कि इस्कॉन एक रिकग्नाइज्ड फोर्स है। इसलिए जो लोग अपने अपने रिलीजन को पकड़े हुए हैं, जो सनातन रिलीजन जो है, जो भगवान कृष्ण से आ रहा है, उसको न समझ के अपने रिलीजन्स को पकड़े हुए हैं, उनको थोड़ा लगता है कि भाई हमारे लोग डेविएट होके इधर जा रहे, तो उसकी वजह से विरोध आता। ऐश्वर्य सेकेंडरी है, ऐश्वर्य जो है सेकेंडरी है, दो नंबर पे है। प्रथम नंबर पे क्या है कि हमारा अपना क्रिश्चियनिटी को खतरा हो रहा है ना, हमारा अपने लोग जो है सारे, जितने हमारे महाराज लोग हैं उसमें सिलेक्टेड से लोग हिंदू इंडियन है, बाकी सब तो विदेशी, वैष्णव हैं, सभी देशी हैं, तो उनको लग रहा है कि हमारी जो हमारा जो अपना रिलीजन है उसमें एक दरार पड़ रही है। दरार दरार कौन डाल रहा है? इस्कॉन डाल रहा। इसकी वजह से विरोध आता। श्री प्रभुपाद को अमेरिका में उपदेश कार्य करना अच्छा लगता था। उन्होंने कहा था, मेरे अधिकांश विद्यार्थी अमरीकी हैं और वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में कृपापूर्वक मेरी सहायता करते हैं। किंतु सैन डियागो में एक व्यक्ति चिल्लाकर बोला था, उसे कृष्ण भावनामृत में विहित से अधिक यौन संबंध चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का आकलन था कि अमेरिकी लोग मन के अच्छे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभाव में वे दिग्भ्रमित, हताश और पतित होते जा रहे हैं। श्री प्रभुपाद पहली बार 1965 ईस्वी में कृष्ण भावनामृत का बीज बोने आए थे। वह कार्य हो चुका था और अब देश के आर पार दर्जनों केंद्र हो गए थे और संसार के अन्य भागों में भी बहुत से केंद्र स्थापित हो गए थे। इसलिए श्री प्रभुपाद को लगने लगा कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही हैं और वह यह भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भावनामृत को अमेरिका और विश्व में सर्व प्रमुख शक्ति बनाना ऐसी वस्तु थी जिसे वे अपने जीवन काल में नहीं देख सकेंगे। उन्होंने कहा था, यह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे वह अमेरिकन हो, भारतीय हो या संसार के किसी देश का हो, कहा था कि वह भगवान चैतन्य की कृपा के वितरण में भागीदार बने। किंतु उनकी सहायता करने को कुछ विरले ही आगे आए थे। उन्होंने उनके साथ काम किया, इसलिए उनके लिए भ्रमण करना जहां तक उनकी शक्ति में था उनके संगठन को अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए एक प्रयास था। वस्तुतः वे औरों के लिए जी रहे थे, वे नहीं सोचते कि उन्हें अधिक लंबे समय तक जीना है। वे इस्कॉन का निर्माण करने और जितना संभव हो पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए भ्रमण जारी रखना चाहते थे और वे अपने सत्यनिष्ठ अनुयायियों और अन्यों पर जो उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे ये प्रभाव जमाना चाहते थे कि प्रत्येक मनुष्य को इस काम को उठाना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के वितरण के द्वारा दूसरों के लाभ के लिए जीवन यापन करना चाहिए। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण भावनामृत के वितरण द्वारा दूसरों के लाभ के लिए जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जो है परा दुखा दुखी है और वैष्णव होने के नाते दूसरों के जीवन का लाभ क्या है, उनको भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकाला जाए। तो कृष्ण भावनामृत के वितरण से आप समाज के जो भटके हुए लोग हैं, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। श्री भोपाल की बताई हो।